अचानक राजवीर ने अरमान को एक तरफ धक्का दिया और आस्था की तरफ झपटने के लिए बढ़ने लगा। आंखों में चमक लेकर आस्था की ओर देखकर राजवीर ने खतरनाक आवाज में कहा, उस वक्त बचपन में तो तुम मुझसे बच गई थीं, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आज के आज ही तुम्हें खत्म कर दूंगा और अपनी बीवी को ये कीमती लॉकेट गिफ्ट करूंगा। ये बोलता हुआ राजवीर बड़ा ही डरावना सा लग रहा था। वहीं अरमान, जो हल्का सा एक तरफ झुक गया था, अब राजवीर की बात सुनकर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थीं, क्योंकि अरमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपनी बीवी पर इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन तभी अविनाश के इशारे पर अबीर ने कुछ लोगों को फोन कर दिया था और मुस्कुराते हुए वो तुरंत अब राजवीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही राजवीर ने आस्था को मारने के लिए हाथ उठाया, अबीर सिंह राठौर तुरंत उसके आगे आया और उसने राजवीर का हाथ रोक लिया। और राजवीर पर उल्टा हाथ उठाते हुए अबीर ने बेपरवाही से कहा, मेरे होते हुए तुम आस्था का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अबीर ने यह जानबूझकर थोड़ा सा तेज आवाज में बोला था ताकि अरमान ये बात आराम से सुन ले। वहीं अरमान अब एक तरफ खड़ा होकर लाल आंखों के साथ ये सब कुछ देख रहा था। वहीं राजवीर जिंदल, जिसके अंदर काफी ज्यादा ताकत थी, उसने अब अबीर पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन अबीर भी उसे एक दो पंच मार रहा था। लेकिन अबीर राजवीर जिंदल जितना शक्तिशाली नहीं था। अब आस्था उनके बीच में खड़ी हुई थी। आस्था जानती थी कि अरमान उसे कुछ नहीं होने देगा, इसीलिए जानबूझकर आस्था अरमान के ही ठीक सामने जाकर गिर गई। लेकिन राजवीर जिंदल, जो अबीर को दो तीन पंच और एक लात मारने के बाद सीधा आस्था को मारने के लिए आगे आ रहा था, जिस चाकू से वंशिका राजवीर को मारने के लिए आई थी, वो चाकू इस वक्त राजवीर के हाथों में मौजूद था। और जैसे ही उसने उस चाकू से आस्था पर वार करने की कोशिश की, लेकिन आस्था चाहती तो आसानी से अपने हाथ को पीछे ले सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपने हाथ का थोड़ा सा हिस्सा आगे कर दिया था ताकि राजवीर उस पर वार करे। और जैसे ही राजवीर ने चाकू से उस पर वार किया, आस्था के हाथों से खून निकलने लगा और उस खून की छींटे अरमान के चेहरे पर जा गिरे। इस वक्त अरमान काफी ज्यादा डरावना और खूंखार सा हो गया था। अब उसने बेरहमी से अपने मुंह से खून पोंछा और अब अरमान अपनी जानलेवा नजरों से राजवीर को देखने लगा। अब राजवीर का तो अरमान पर ध्यान ही नहीं था, उसका ध्यान उस वक्त अगर किसी चीज पर था तो सिर्फ और सिर्फ उस लॉकेट पर। और उस लॉकेट को पाने के लिए राजवीर कुछ भी कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी की जान गई थी। जब भी वो लॉकेट उसके सामने आया करता था, उस लॉकेट को पाने की उसकी लालसा बढ़ जाया करती थी और उसके अंदर का साइकोपन तुरंत बाहर आ जाया करता था, इसीलिए वो बस हर हाल में उस लॉकेट को पाना चाहता था। अब जैसे ही राजवीर ने बिना किसी की परवाह किए आस्था के गले पर सीधे सीधे चाकू से वार करने की कोशिश की, अरमान तुरंत सामने आकर खड़ा हो गया था और एक हाथ से उसने राजवीर का गला पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से उसने उस हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ में चाकू था। अब राजवीर की निगाह अरमान पर गई। अरमान का चेहरा राजवीर के जितना ही गंभीर और खतरनाक था। तब राजवीर अरमान की ओर दांत भींच कर बोला, मेरे सामने से हट जाओ चेले, इस लड़की को मैं आज जान से मार डालूंगा और इससे ये आखिरी लॉकेट हासिल कर लूंगा। अरमान डार्क एक्सप्रेशन लाते हुए सीरियस वॉइस में बोला, वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, अब राजवीर के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो गए थे और वो समझ चुका था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। आखिर अरमान उसका चेला था, अरमान सिंघानिया का सनकीपन बिल्कुल उस पर गया था। अब तो अरमान ने लगातार राजवीर जिंदल के मुंह पर वार करना शुरू कर दिया था और अब आस्था कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ ये सब देखने लगी थी। फ्लैशबैक, जिस वक्त आस्था अविनाश से मिलने के लिए अबीर सिंह राठौर के मेंशन में गई थी, उस वक्त जब उसे पता चला कि अरमान सिंघानिया राजवीर जिंदल को अपना चेला कहता है, तो ये बात उसे काफी खटकी थी। लेकिन तभी उसने वंशिका की बात उन लोगों को बताई कि अरमान ने किस तरह से बचपन में वंशिका के भाई को मारा था। आस्था को हैरानी तो हुई, लेकिन उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। वैसे भी जब से वो अरमान से मिली तो उसका व्यवहार काफी अजीब था, लेकिन अब धीरे धीरे वो आस्था के प्यार में काफी बदल चुका था। तभी आस्था ने दादाजी से बात करने का फैसला किया और दादाजी को जब उसने अपनी कसम देकर सारी बात जानने की कोशिश की, तब दादाजी ने राजवीर वाली सारी बात आस्था को बता दी थी। अब तो आस्था काफी हद तक परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है। अगर उसे हमेशा हमेशा के लिए राजवीर जिंदल के चंगुल से अपने पति अरमान सिंघानिया को निकालना था और साथ ही साथ राजवीर जिंदल से अपना बदला लेना था, तो उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से अरमान ही राजवीर जिंदल के खून का प्यासा हो जाए। इसीलिए आस्था ने अपने आप को निशाना बनाया था और अपने आप को आगे रखकर उसने ये सारी चाल चली थी। जल्दी ही आस्था फ्लैशबैक से प्रेजेंट वापस आ गई थी और फिर अरमान को देखने लगी, जो इस वक्त राजवीर जिंदल पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था और उसे बुरी तरह से मार रहा था। लेकिन राजवीर के चेहरे पर किसी तरह का कोई डर के भाव नहीं थे, वो इतने दर्द में भी मुस्कुराए जा रहा था। और आखिर में जब वो पूरी तरह से अधमरा हो गया, तब आस्था ने राजवीर की जान बचाने के लिए अरमान को पीछे की ओर खींचा और चिल्लाते हुए बोली,
इसकी जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। अब अरमान अपने होश में वापस आया और आस्था के उस हाथ को देखने लगा जहां से आस्था का खून बह रहा था। अरमान बड़े दीवानगी से आस्था के खून को साफ करने लगा और उस पर अपना रुमाल बांधकर दर्द भरी आवाज में पूछता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? बोलो तुम ठीक हो ना? अब अरमान को आस्था कितनी केयर करता हुआ देखकर राजवीर, जिसके शरीर में जान नहीं बची थी लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, वाकई तुमने आज ये साबित कर दिया, तू वाकई राजवीर जिंदल का चेला है। तेरी बीवी पर जरा सी आंच क्या आई, तूने अपने गुरु पर ही हाथ उठा दिया, वाकई मानना पड़ेगा। तभी अचानक अविनाश वहां आकर खड़ा हो गया और राजवीर जिंदल की ओर नफरत भरी नजरों से देखकर बोला, पहचाना हमें, हम कौन लोग हैं? राजवीर जिंदल, आज तुम्हारे बाप का घड़ा भर चुका है और आज तुम्हारा अंत है। ठीक उसी वक्त अबीर सिंह राठौर अपने होठों के पास लगे खून को साफ करते हुए बोला, राजवीर जिंदल, अपनी जिस मरी हुई बीवी के लिए आज तक तूने इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी मरी हुई बीवी की डेड बॉडी को तुम्हारे डाक विला से जब्त कर लिया गया है। क्या तुम उसे देखना चाहोगे, उसका अंतिम संस्कार किस तरह से हो रहा है वो देखो। जल्दी ही एक लाइव स्क्रीन वहां चलने लगी जहां पर राजवीर जिंदल की मरी हुई बीवी को लिटाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले अबीर सिंह राठौर ने किसी और को नहीं बल्कि सीधा पुलिस वालों को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी थी कि राजवीर जिंदल के विला में एक डेड बॉडी है जिसे कई सालों से राजवीर जिंदल ने अपने घर पर संभाल कर रखा हुआ था। अब सारी चीज चेक होने के बाद और राजवीर जिंदल को मेंटल साबित करने के बाद उन लोगों ने उस डेड बॉडी को लावारिस की तरह ही मुखाग्नि दे दी थी और उसकी रिकॉर्डिंग अबीर सिंह राठौर ने अपने आदमियों के द्वारा बनवा ली थी और अब वो रिकॉर्डिंग सीधा सीधा वहां हल्दी के फंक्शन में राजवीर जिंदल को दिखाई जा रही थी। अब तो राजवीर जिंदल पूरी तरह से चीखने लगा और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है।
फिर अचानक उन सब की ओर देखकर गुस्से से बौखलाकर बोला, हाँ, मैं जान चुका हूँ कि तुम सब कौन हो, मैंने तुम्हारे पूरे परिवार की जान ली है। तब वंशिका बुरी तरह से रोकर बिलखते हुए बोली, तुमने इस अरमान सिंघानिया को अपने जैसा बनाया और इसी ने मेरे भाई की बेरहमी से जान ली थी, और तुम्हें क्या लगा राजवीर जिंदल, तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी अपना मोहरा बना सकते हो, आज तुम्हारे पापों का अंत होगा और तुम भी उसी तरह तड़पोगे जिस तरह से हम तड़पे थे। वंशिका ने दर्द भरी आवाज़ में रोते हुए वहां ये बात बोली थी। ध्रुव के तो माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। उसे अब समझ में आ चुका था कि वंशिका ने अरमान पर वो हमला क्यों किया था, राजवीर जिंदल ने कितनी घटिया और घिनौनी हरकत की थी, किस तरह से आस्था को उसके परिवार से दूर किया, अबीर सिंह राठौर के जान से प्यारी दादी का गला काटकर जान ले ली थी, और अपनी मरी हुई बीवी को पिछले 25 सालों से उसने किस तरह से अपने पास संभाल कर रखा हुआ था और उसकी बीवी की लाश को वो बेइंतहा चाहता था। ये सारी कम मानसिकता वाली बात सब लोगों के सामने आ चुकी थी। वहीं राजवीर जिंदल, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बुरी तरह से रोकर बिलख रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, अचानक से उसने पूरी तरह से रोना और गिड़गिड़ाना बंद कर दिया था। अपनी बीवी को जलते हुए देखकर उसे ऐसा लगा मानो कि उसकी जान निकल रही हो और उसकी बीवी हमेशा हमेशा के लिए उससे जुदा हो गई है, और ठीक उसी वक्त उसने भी अपना दम तोड़ दिया। अब तो अरमान सिंघानिया पूरी तरह से झुक गया था और एक तरफ धम से बैठ गया था, और उस वक्त अरमान सिंघानिया के आंखों में आंसू थे क्योंकि वंशिका की दर्द भरी चीख उसके कानों में गूंजने लगी, और उसे अब सब समझ में आ चुका था कि असल में क्या हुआ था, और राजवीर जिंदल के साथ रहकर वो एक इंसान नहीं बल्कि जानवर बन गया था, और किस तरह से दादाजी उसे हमेशा से राजवीर से दूर रखने की कोशिश किया करते थे। ये सारी यादें और बातें अब जैसे ही अरमान सिंघानिया की आंखों के सामने आईं, अब तो उसका दिल धक्सा रह गया था। वहीं आस्था समझ चुकी थी कि अरमान ने किस सिचुएशन में ये सारी बातें सीखी थी। आखिर अरमान उस वक्त एक छोटा बच्चा था, और एक मासूम से बच्चे को जिस रंग में ढाला जाता है वो ढल जाता है, और यही सब उस वक्त अरमान के साथ हुआ था। वंशिका को रोते हुए देखकर ध्रुव उसके पास आया और उसके आंसू पोंछकर उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान अपने कान पकड़कर झुककर धम से वंशिका के सामने जा बैठा और गिल्टी टोन में बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकती हो और जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो। लेकिन वंशिका ने रोते हुए अरमान के कंधे पर हाथ रखा और उसे उठाते हुए बोली, मैं अपना एक भाई खो चुकी हूँ और अपना दूसरा भाई कभी भी नहीं खोना चाहती हूँ। ये बोलकर वंशिका ने अरमान को गले से लगा लिया था। उस वक्त अरमान की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार हार्टलेस, खड़ूस, अकड़ू, एरोगेंट अरमान सिंघानिया की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर आस्था का दिल कतरा कतरा हो गया। आस्था अपनी नाराजगी खत्म कर चुकी थी। फटाफट से आगे बढ़कर उसने अरमान को गले से लगा लिया था और रोने लगी। उस वक्त अरमान अपनी बीवी का साथ पाकर खुश हो गया था। वहीं उस वक्त आस्था अरमान को गले से लगाने के बाद तुरंत वंशिका भी आस्था के गले से जा लगी। अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए आस्था ने टाइगर और मरिया को दादाजी की मदद से घर के बाहर भिजवा दिया था, इसीलिए वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं थे।
ठीक उसी वक्त रश्मि, राधिका, एंजल, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, रौनक, अविनाश, अबीर सब एक दूसरे के पास जाकर खिलखिलाकर एक दूसरे से गले मिलने लगे। पूरा परिवार इस वक्त एक साथ जमा था। आखिर में नानी माँ और जिन्हें अब बाहर से शोर शराबे की आवाज आना बंद हो गई थी, तो वो भी दादाजी के साथ वहां पहुंची। अब जैसे ही उन्होंने इस तरह से सबको राजी खुशी एक साथ देखा और राजवीर जिंदल को मरा हुआ देखा, तो उन्हें सब समझ में आ चुका था। हालात संभल चुके हैं और राजवीर का अंत हो चुका है। और वो अब शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, अरे बच्चों, आपस में एक दूसरे को प्यार बांटते रहोगे। यहाँ एक नज़र इस तरफ बूढ़े दादा और नानी की ओर भी देख लो। अब जैसे ही नानी ने वहाँ आकर ये बोला, अब सब लोग खुशी से आकर नानी माँ और दादाजी के गले से लिपट गए थे। अब सबके दिलों का मेल हो चुका है। कुछ देर तक रोने धोने की बाद नानी माँ बोली, अरे बच्चों, इन सब चक्करों में क्या तुम सब भूल गए हो? अरे राधिका और एंजल बिटिया को हल्दी भी लगानी है, चलो फटाफट से हल्दी लगाओ। कितना खुशी का माहौल है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब जैसे ही नानी माँ ने अपने रॉकिंग स्टाइल में ये बोला, सब लोगों के चेहरे पर रोते रोते हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तब तक अरमान सिन्हानिया के आदमियों ने पूरे के पूरे लॉन को साफ कर दिया था और राजवीर जिंदल की डेड बॉडी को उसकी बीवी की डेड बॉडी के साथ भिजवा दिया गया था और वहीं पर उसको मुखाग्नि दे दी गई थी। अब जल्द ही बड़ी हंसी खुशी के माहौल में राधिका और एंजल की हल्दी की रस्म होनी शुरू लगी।